ओम शांति। भारत के धर्म ग्रंथों में लिखा है, एक तरफ ब्रह्मचर्य और दूसरी तरफ सारे वेद पुराण उपनिषद। एक तरफ वह व्यक्ति जो ब्रह्मचारी है और दूसरी तरफ वह व्यक्ति जिसने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है। ब्रह्मचारी का पलड़ा भारी होगा। एक दिन भी जो और एक रात भी जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसको एक यज्ञ में जितना पुण्य होता है, यज्ञ करने से जितना पुण्य होता है, उतना पुण्य मिलता है, ऐसा भी वर्णन है। बट दैट शुड बी अनब्रोकन, अनफ्रैक्चर्ड, अनपंक्चर्ड ब्रह्मचर्य, अखंड, निर्विघ्न, ऐसा ब्रह्मचर्य। तो कुमार, जीवन की जो नींव है ब्रह्मचर्य है। आज तक इस यज्ञ से अब तक जो भी कुमार यज्ञ से बाहर गए हैं, ऊपर से कारण कुछ कुछ दिखे, पर अंदर से कारण एक ही रहा है, काम विकार। जो जो कुमार जीवन से नीचे गिरे, कारण एक ही रहा, काम विकार। ऊपर से दिखाई दे रहा है इसका, इसके साथ ठीक नहीं जमा, झगड़ा हुआ, या ठीक नहीं रहा व्यवहार, या किसी ने कुछ कह दिया। ऊपर से बहुत सारे कारण थे, अंदर से एक ही कारण था, काम का आकर्षण। द अट्रैक्शन ऑफ लस्ट। और यदि इस कुमार जीवन को सफल करना है, शक्तिशाली बनाना है, प्रेरणादायी बनाना है और आगे बढ़ना है, तो केवल इस एक पर यदि काम करे तो सारा जीवन सवर जाएगा। परंतु क्या हमने इस ब्रह्मचर्य के, इस प्योरिटी के महत्व को समझा है? जैसे एक भगत होता है, गृहस्थ, बहुत दुखी, गृहस्थी में दुख कम नहीं है, इतना दुखी हो जाता है पत्नी से, बच्चों से, कि भगवान से रोज प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे प्रभु, कुछ तो कर, बहुत मन्नतें मांगता है। तो भगवान एक दिन प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं मन्नत मांग। वो कहता है, मैं गृहस्थी हूं, मुझे वापस कुमार बना दो, बहुत दुख है, झंझट इतनी ज्यादा है कि मुझे वापस कुमार बना दो। भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें मन्नत मांगने को कहा था, जन्नत नहीं। तो कुमार जीवन क्या है? जन्नत। क्योंकि वो जो मार्ग है संसार का, गृहस्थ का, उसमें एंट्री करते ही बंधन चालू, ढेर सारे बंधन, दुख ही दुख, अथाह दुख। परंतु एक छोटी सी काम तृप्ति के लिए व्यक्ति जीवन पर्यंत वो सारे दुख सहन भी कर लेता है। तो जब तक ये ब्रह्मचर्य मजबूत ना हो जाए, शक्तिशाली ना बन जाए, ऊर्जा का रूप ना बन जाए, प्यूरिटी आ नहीं सकती। कितने ही सेवा करो और कितना ही जो करना है कर लो। दुख रहेगा, खालीपन रहेगा, बेचैनी रहेगी, सेवा उस बेचैनी को भर नहीं सकेगी जो ब्रह्मचर्य के अभाव से आई है। सर्विस कैनॉट फुलफिल द वैक्यूम क्रिएटेड बाय लैक ऑफ ब्रह्मचर्य। प्योरिटी इज इररिप्लेसिबल, उसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। इसके लिए इस एक धारणा को मजबूत करना है बस, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। तो हमने देखी सबसे पहली बात, स्वयं को क्या कर देना, बिजी कर देना, कोई 10 मिनट भी खुला नहीं छोड़ देना दिनचर्या की, क्योंकि उसी 10 मिनट में माया आ जाएगी। संसार में जितने जेल है और जितने भी कुकर्म किए हुए अपराधी है, उनसे जाके पूछो तो कहेंगे पता नहीं क्या हो गया था, वैसे तो वो ठीक लोग हैं, पर पता नहीं वो 10 मिनट और 15 मिनट क्या हो गया था, ऐसी वासना ने पकड़ लिया था कि अब जीवन पर्यंत जेल में बैठकर पश्चाताप कर रहे हैं। तो बिजी कर देना, सबसे पहले आइडेंटिफाई अपने दिनचर्या के वो कौन सा समय है जहां माया ज्यादा आती है, रात को सोते समय, दोपहर के समय, ऑफिस के समय, ट्रैवलिंग के समय, क्या करते हुए माया ज्यादा आती है। कोई तो एक टाइम होगा जहां मैं खाली हूं, आइडेंटिफाई करो उस जोन को और उसको क्या क्रिएटिविटी से भर सकते हैं उसका चिंतन करना है। किसी को हो सकता है दिनचर्या बहुत अच्छी है, दिन भर सेवा 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 सेवा, और जैसे ही सोने जाते हैं बेड पर तब माया चालू होती है सोने तक, फिर सुबह वापस अमृत वेला और बाकी सब ठीक, केवल उतनी माया आती है। पर रेगुलर आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे पहले क्या कर देना, स्वयं को व्यस्त कर देना, फिर अध्ययन, रीडिंग, स्पार्क की किताबें हैं, यज्ञ की किताबें हैं, रोज कुछ ना कुछ नया पढ़ना है। हम मुरली और अव्यक्त वाणियां छोड़कर कह रहे हैं। उसके बाद में अमृत वेला, बिना अमृत वेले के इस जीवन में कोई सुख नहीं है। भगवान के महावाक्य हैं, अमृत वेला स्वयं को परमात्म प्रेम से इतना भर दो कि सारे दिन भर फिर किसी देहधारी का प्यार आकर्षित नहीं करेगा। यदि सुबह, क्योंकि एक सूक्ष्म बात, आत्मा की जो प्यास है वो प्यार की है और सुख की है, यदि उसे परमात्मा की तरफ से न मिला तो वो देह से वो प्यास पूर्ण करेगा, देह को देखकर, देह को भोग कर, क्योंकि इसको सुख चाहिए। अतिंद्रिय सुख नहीं दिया, इंद्रिय सुख की तरफ जाएगा। परमात्मा प्रेम नहीं दिया, इंद्रियों के प्रेम की ओर जाएगा। तो अमृत वेला परमात्मा प्रेम से स्वयं को भर देना है। एक मुरली में बहुत सुंदर महावाक्य आए थे, जो बच्चे सच्चे दिल से बाप को याद करते हैं, बाप से प्यार करते हैं, बाप उन्हें चुन चुन के याद करता है। लिखने जैसा वाक्य है डायरी में, जो बच्चे दिल से बाप से प्यार करते हैं, बाप उन्हें चुन चुन के याद करता है। तो अमृत वेला की प्लानिंग करनी है, क्या करना है, उठना कितने बजे है, उठकर क्या करना है। किसी को उठकर नींद आती है तो चलते फिरते अमृत वेला करो, छत पर जाओ अमृत वेला करो, टेरेस बाहर जाओ अमृत वेला करो, गार्डन में जाओ अमृत वेला करो, कमरे में जगह नहीं है कहीं पर भी चलते फिरते, परंतु सोना नहीं है बस। अगर वैसे भी नहीं होता है तो कुछ सुनो, फिर बाबा की अव्यक्त मुरली ऑडियो वो सुनो, चलते फिरते टहलते जाओ बस, पर सोना नहीं है, वो टाइम सोने का नहीं है। बाप से बात करो, अगर अशरीरीपन नहीं होता है, परमधाम तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है, कुछ पढ़ो अमृत वेला, कुछ भी नहीं हो रहा है सुनो, वो भी नहीं हो रहा है गीत सुनो, कुछ तो होगा ही कि इन सब में से, पर मिस नहीं होना चाहिए।
पहला स्टेप तो ये लेना है, फिर भले बाद में वापस सो जाओ, पर फिर धीरे धीरे वो वापस सोने का जो प्रोग्राम है उसको भी ठीक करना है। दिनचर्या को ऐसे सेट करना है कि जिसमें नींद भी ठीक हो जाए और अमृत वेला भी ठीक हो जाए, अमृत वेले के बाद चिंतन भी अच्छा हो जाए, धीरे 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 इस तरह से सेटिंग करनी है। फिर बताया मनन चिंतन, तो मनन को बढ़ाना है, चिंतन को बढ़ाना है। मुरलिया बहुत लिख ली, अभी टॉपिक्स लिखना चालू करना है। मुरलिया बहुत लिख ली, मुरली क्लास में गए, मीठे बच्चे लिखा, प्रश्न लिखा, फिर उत्तर लिखा, फिर गीत लिखा, फिर डायरी बाजू में रख दी, फिर थोड़ा सा डोले, ऐसे ऐसे थोड़ी सी झपकी ले दी, और फिर से जाग आया, मीठे मीठे से के लदे बच्चों प्रति, फिर से डायरी वापस ली, फिर से धारणा के लिए मुख्य सार एक, धारणा के लिए मुख्य सार दो, फिर वरदान लिखा, फिर स्लोगन लिखा, डायरी बंद, खबरदार अगर खोला तो, अब सीधा कल खुलेगी, तब तक स्टैच्यू स्टॉप बंद। और दिनचर्या में वही जो अब तक कर रहे थे रोज, उसमें कोई चेंज नहीं, मुरली अपनी जगह, दिनचर्या अपनी जगह। फिर दूसरे दिन वापस मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर गीत डायरी नीचे, मीठे मीठे से कि लदे बच्चे, धारणा वरदान स्लोगन स्टॉप। कुछ कुछ माता है तो हमने ऐसे देखी कि सेंटर पर ही डायरी छोड़कर जाती है अपनी, अब सीधा कल ही खोलेंगे, घर नहीं लेके जाना, उधर क्लास पूरी डायरी सेंटर पर घर, फिर दूसरे दिन वापस खोलो। पॉइंट्स बहुत लिख ली, अब टॉपिक्स लिखो, पांच टॉपिक्स हर मुरली से, जैसे जो अमृत वेला थे उनको एक काम दिया था आज, बहन और भाई, आज की पूरी मुरली उस पर है ना, इन दोनों का संबंध कैसा रहता है उसके ऊपर लिखना, क्या क्या रहता है इस रिलेशनशिप में, ब्रदर और सिस्टर, टॉपिक आज की मुरली से वहां से हटाया, लिखना उसके ऊपर। खुशी एज इंजेक्शन, ये इंजेक्शन लगाए तो क्या क्या हो सकता है और किस किस इसके साइड इफेक्ट्स कुछ है, इसकी ट्रीटमेंट, इसके एडवर्स इफेक्ट, इसके एडवांटेजेस, कहां लगानी है कहां नहीं लगाना है, टॉपिक वहां से निकाला। बाप ये कहते हैं, माया ये कहती है, बाप क्या क्या कहता है और उसके विरोध में माया क्या क्या कहती है, लिखना टॉपिक्स। तो मुरली से ढेर सारी पॉइंट लिखने से अच्छा और बहुत बड़ी डायरी में लिखने से अच्छा एक छोटी सी पेपर पे लिखना है, वो जो छोटी डायरी आती है ना एकदम, इतनी छोटी डायरी आती है, उस पे दो तीन ही टॉपिक्स लिख देना मुरली सुनते सुनते। अब ये जो टॉपिक्स लिखे इन पर काम करना है दिन भर में, जब भी टाइम मिले, ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं अभी बहुत टाइम है, वो निकालो और उसको पढ़ो और उसके ऊपर काम करो। ये क्या लिखा, धीरज धर्मनवा, धीरज कहां धरू ट्रैफिक में, तो थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, नहीं तो रोड रेज, बहुत सारी केसेस आ रही है रोड रेज, रोड रेज अर्थात जब क्रोध रोड के ऊपर किया हुआ, उससे होने वाले एक्सीडेंट्स, उससे होने वाले झगड़े, धैर्यता की कमी है वहां पर। तो ब्रह्मचर्य के लिए क्या चाहिए, चिंतन चाहिए, मनन चाहिए, अपनी मनन शक्ति को बढ़ाना है। तो रोज कुछ टॉपिक्स लेना, जो लिख सके है लिखे, जो नहीं लिख सके वो चिंतन करे उसके विषय में। उसके बाद बताया ए एपेटाइट कंट्रोल, एपेटाइट अर्थात भूख, पैलेट, कंट्रोल डाइट के तीन नियम है, संयमित आहार के, सम्यक आहार, राइट फूड, सबसे पहला जो भी खाए उत्तेजना उत्पन्न ना करे, फूड दैट शुड नॉट क्रिएट एक्साइटमेंट, अगर ऐसा कर रहा है तो वो राजसिक और तामसिक भोजन है, दूसरा, इट शुड नॉट क्रिएट लेजीनेस, आलस और प्रमाद जो उत्पन्न करता है भोजन, वो खाने के बाद एकदम सोने की इच्छा हो जाती है, वो सम्यक आहार नहीं है। और तीसरा, ऐसा आहार जो स्वास्थ्यवर्धक हो, शक्तिवर्धक हो, वो खाने के बाद। और एक तीसरी और एक सूक्ष्म चीज, भोजन के पहले जो स्थिति है वो भोजन के बाद में भी वैसी रहे, मन की और शरीर की वही हल्कापन रहे। ऐसा नहीं कि भोजन खाने के बाद शरीर भारीपन। जगदीश भाई जी ने लिखा है, कोई कोई लोग ऐसा खाते हैं कि खाने के बाद इतना तीखा उसमें डालते हैं कि जब तक ऐसा आवाज नहीं करते उनको मजा नहीं आता है। एक है सीता, किसमें थी? शोक वाटिका में। सतयुग में क्या होगी? अशोक वाटिका। और ब्राह्मणों की छोक वाटिका, जिसमें हर चीज को क्या करते, छोक लगाते रहते हैं, हर चीज को छोक। चावल बनाए पर सफेद अच्छा नहीं लगता है, उसको क्या करो, छोक वाटिका। वो अशोक वाटिका एक है, शोक वाटिका, और ब्राह्मणों ने अपनी नई वाटिका तैयार की है। दाल बनी हुई है बट प्राइड, जो भी चीज है उसको क्या करो, घुसाओ तेल में, डालो उसमें तेल। विषय वैतरणी नदी से निकल गए, तेल वैतरणी नदी में डूब रहे हैं। सब्जी में तेल दिखना चाहिए ऊपर तैरते हुए, तो फिर मजा आता है। विवेकानंद से पूछा था विदेश में, तुम्हारे देश के धर्म का क्या हुआ? उन्होंने कहा था, मेरे देश का धर्म चूल्हे और चौके में जाके भस्म हो गया है। वेर किचन इज टेम्पल एंड फूड इज गॉड। दिन रात भोजन 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 भोजन, उसी का चिंतन करते रहते, परमात्मा चिंतन छूट गया है। तो एपिटाइट कंट्रोल, जितना संयम यहां होगा ब्रह्मचर्य सहज होगा। जगदीश भाई जी ने एक जगह लिखा है, भाई बहने कहते थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा मसाला डाल दो बस, थोड़ा सा तीखा कर दो उसको, और थोड़ा थोड़ा करते करते हथौड़ा लग जाता है आत्मा पर। और एक दूसरी बात, आत्मा की भूख कभी मिटी है कि आज तक? द्वापर से कोई कह सकता है मेरा पेट भर गया? योगी अर्थात आधा पेट भरने के बाद भोजन बंद कर दे, भरपेट खाने वाले कभी योगी नहीं हो सकते। मनुष्य जितना खाता है उससे आधा पेट अपना भरता है और आधा डॉक्टर का। बहुत ज्यादा रहम दिल है, इतना खाता है कि डॉक्टर का भी पेट भरता है साथ साथ। बहुत ज्यादा उसको चिंता है डॉक्टर की, कि डॉक्टर पहले भक्ति मार्ग में मंदिर दर्शन और देवता दर्शन करते थे, ब्राह्मण बनने के बाद ब्रह्मा भोजन खाने के बाद डॉक्टर दर्शन में लगे हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है अब सी, उसके बाद है सी, कंट्रोल द सेक्सुअल एनर्जी। सबसे पहले कंजर्व द एनर्जी, या फिर कंट्रोल द एनर्जी, फिर है कंजर्व द एनर्जी, फिर है डाइवर्ट द एनर्जी, एंड देन सब्लिमेट द एनर्जी। सबसे पहला है कंट्रोल करना है एनर्जी को। इस देह में ऊर्जा है, शक्ति है, यदि ये शक्ति नीचे बहती है तो शरीर को जन्म देगी, और ये शक्ति अगर ऊपर बहती है तो यहां जाएगी, ओजस बनेगी, जिसके लिए ब्रह्मचर्य कंट्रोल में चार प्रिंसिपल है। सबसे पहला है कंट्रोल, उसमें आठ बातें हैं। दूसरा है कंजर्व करना एनर्जी को, एनर्जी का दमन नहीं करना। दमन करोगे तो पागलपन आएगा, विक्षिप्तता आएगी। संसार में सभी लोगों ने यही किया है, ऋषि मुनियों ने। इसके लिए उनको अप्सराएं दिखती थी। वो कहां से आती थी? अप्सराओं को क्या लेना देना, बेचारे बूढ़े बाड़े पतले दुबले कंदमूल खाने वाले जंगलों में बैठे, किसी का कोई नुकसान नहीं करते, वहां उनको अप्सराएं दिखती थी। वो कहां का यादगार है? वो यहां का यादगार है। वो मन का प्रोजेक्शन था, कोई अप्सराएं नहीं आती थी कहीं से। सप्रेस्ड डिजायर्स, प्रोजेक्शन था वो। कंजर्व अर्थात संरक्षण करना, स्टोर करना एनर्जी को। जिसने एनर्जी को जितना स्टोर किया है वो उतना अधिक पावरफुल। एक माली है, गार्डनर, जिसके पास बहुत सारा बगीचा है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे फूल है। सारे फूलों को वो एकत्र करता है, जूस निकालता है सबका, बहुत सुंदर, और फिर जाकर उस रस को नाली में फेंक के आता है। तो ये मूर्ख है या बुद्धिमान है? देह में भी ऐसा ही ऊर्जा का एक रस है जिसका संकल्प से कनेक्शन है। संकल्प विकारी, वो नीचे बहेगा। संकल्प काम वासना का, वो नीचे बहेगा। और जो योगी अपने इस रस को उस माली की तरह व्यर्थ नाली में गवाता है, वो महामूर्ख, मूर्खाधिराज। देखना है तो यहीं देखो, बाबा कहते हैं। कंजर्व द सेक्सुअल एनर्जी, डाइवर्ट द एनर्जी। गंगा है, उसको रोका नहीं जा सकता, वो बहेगी, उसको सागर से मिलना है, बट चेंज द पाथ। पांचवा है सब्लिमेशन, सब्लिमेट द एनर्जी, उदात्तीकरण, पवित्रीकरण, प्यूरिफिकेशन। तो ये चार स्टेजेस है ब्रह्मचर्य के। सबसे पहले पर आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। आठ बातें हैं, सभी अपनी डायरी भी खोलेंगे और सभी बातों को नोट करेंगे। जिनको पता है वो भी नोट करेंगे रीइन्फोर्स करने के लिए। शास्त्रों में लिखा है, बाबा ने कभी ब्रह्मचर्य के विषय में सीधा नहीं कहा है, प्यूरिटी की बातें की है हमेशा। ब्रह्मचर्य की बातें मुरली में सीधी नहीं आती है, कहां कहां आई है। कुमारों से मुलाकात 1972, अव्यक्तवाणी। देह सांप है, सांप में विष होता है। जो कुमार दृष्टि से और संकल्प से इस देह को टच करते हैं, किससे? हाथ से नहीं, नजर से और संकल्प से, वो महा महा और महापाप के अधिकारी होंगे। इसके लिए आज से सभी कुमार ये प्रतिज्ञा करेंगे कि केवल और केवल मस्तक मणि को देखेंगे, देह को नहीं देखेंगे। बाबा ने प्रतिज्ञा कराई थी कभी। ऐसी कुछ कुछ बातें कुछ कुछ मुरलियों में आती है, पर बहुत खुले रूप से कहीं पर कही नहीं गई है। बातें जो कही गई है वो पवित्रता के विषय में कही गई है, प्यूरिटी के विषय में। वो तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ब्रह्मचर्य के विषय में कुछ कुछ कहा है बीच बीच में। तो इसमें आठ बातें हैं। इन आठ बातों में से एक भी बात किसी भी समय, इसको भी लिख के रखना, किसी भी समय, एट एनी टाइम, किसी भी स्थान पर, एट एनी प्लेस, और किसी भी परिस्थिति में, इन एनी सर्कमस्टांसेस, यदि खंडित होती है, ब्रेक होती है, तो वो ब्रह्मचर्य का खंडन है। इट इज द ब्रीच ऑफ ब्रह्मचर्य, एनी प्लेस, एनी टाइम, एनी कंडीशन। इन में से आठों में से कोई भी एक बात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी एक भी होती है तो वो ब्रह्मचर्य का खंडन है। यदि हम इनमें से कुछ एक बात भी कर रहे हैं तो हम ब्रह्मचारी नहीं। हमारी कैटेगरी उसमें जाएगी पतित, विकारी, कुल कलंकित, बाप का नाम कटाने वाले, नाक काटने वाले, यज्ञ की ग्लानि करने वाले, इस कैटेगरी में जाएगा। सबसे पहली चीज है दर्शनम, आठों चीजें संस्कृत में है। दर्शनम देखना, किस दृष्टि से देखा जाता है। ब्रह्मचारी के लिए कहा जाता है कोई स्त्री उसे दिख जाए एक बार देखना यह स्वाभाविक है, परंतु पलट के मुड़कर फिर दूसरी बार देखना इच्छा है, तीसरी बार फिर से मुड़कर देखना वासना है। यह केवल पुरुष और स्त्री की बात नहीं है, स्त्रियों के लिए भी वही है, जो इधर वो उधर, क्योंकि पांच विकार स्त्री के और पांच विकार पुरुष के, दोनों के लिए। सबसे पहले दृष्टि पर काम करना है, रूहानी दृष्टि हो। सुबह की पूरी मुरली उसके ऊपर है, भाई भाई या भाई बहन। देयर इज नो प्लेस ऑफ एनी रोमांटिक रिलेशनशिप इन दिस यज्ञ। फैमिलियरिटी, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स, हमारी क्या है, आध्यात्मिक दोस्ती है। स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप इज ऑल्सो ट्रैप। ऑल स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स मोर ऑफन देन नॉट इन द लॉन्ग रन टर्न्स इनटू सेक्सुअल फ्रेंडशिप्स। जो ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के बीच फ्रेंडशिप्स है, सेवाओं में लगाओ, लेन देन, दोस्ती, घूमना, व्हाट्सएप टॉक्स, इमेजिनेशंस, शेयरिंग, ये सारा धीरे धीरे पतन की ओर ले जाता है। विश्वभर में कितने ही योगी, नॉट ओनली यहां, सब जगह जहां पर नंस है और जहां पर ब्रह्मचारी है, फादर्स एंड नंस, भिक्षु और भिक्षुनी, सन्यासी और सन्यासिनी, दुनिया भर में सबका पतन होने का कारण क्या रहा, यही रहा, एक अटैचमेंट, एक फैमिलियरिटी। बात करना अच्छा लगता है, साकार मुरली में बाबा के वाक्य आते हैं, बाबा ये बहन बहुत मीठी है। बच्चे बाप से कहते हैं, बाबा ये बहन बहुत मीठी है, बहुत मीठी मुरली चुला सुनाती है। बाप कहते हैं, अरे बच्चू बहन मीठी नहीं है, मुरली मीठी है। दादी हमेशा अपना उदाहरण देते हैं। जानकी दादी ने एक भाई का कोर्स कराया, सबको पता होगा, और बहुत अच्छा भाई था, अनन्य था, बहुत अच्छे से कोर्स सुना, सब कुछ किया। दादी बाबा के पास पहुंची और बाबा को बताया, बाबा वो जो भाई है ना, एकदम वारिस, कल पहले वाला, बहुत अच्छा है, उसने ऐसा कोर्स सुना एकदम पूरा कि बाबा उसको एकदम तीर लग गया। बाबा ने कहा, बच्ची तीर उसको लगा है या तुमको? प्रभावित हो जाना किसी के गुण से और किसी की विशेषता से, और यह भूल जाना कि उसमें गुण और विशेषता भरी किसने, वो भूल गए, और उसके गुणों की तरफ और उसके व्यक्तित्व की तरफ आकर्षित हो गए। यह भी ब्रह्मचर्य का खंडन है। सबसे पहला है दर्शनम, देख रहे हैं तो शरीर को देखना, बॉडी को, यह ब्रह्मचर्य का खंडन है। केवल देखना ही खंडन है। दृष्टि, बाइबल में एक जगह लिखा है, इफ यू लुक एट अ वुमन एंड हैव एडल्ट्री इन योर थॉट्स यू हैव ऑलरेडी कमिटेड द एक्ट. दृष्टि को ठीक करना है, दृष्टि पर काम करना है. और क्या है शरीर में? चमड़ी को निकालो, देखो उसके अंदर क्या है. संसार में जितनी गंदगी है वो सब इधर है अंदर, मल मूत्र सब इसमें ही भरा है. बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन के अतिरिक्त शरीर कुछ नहीं है. पर उसी के पीछे पागल है, उसी को देखते रहते हैं. चौधवी का चांद हो या आफताब हो, आफताब या आफत, शरीर भ्रांति पैदा करता है. ब्यूटी इज बट स्किन डिप, केवल चमड़ी तक है. कहां है सौंदर्य? जाओ जाकर देखो हॉस्पिटल में, जनरल वार्ड जाओ, वहां पर सरकारी अस्पतालों में कहां है सौंदर्य? है कुछ उसमें? कहां है सौंदर्य? जाओ वो वृद्धाश्रम में, बूढ़े लोग, वो भिखारी सड़क के किनारे भीख मांगता है, कहां है सौंदर्य? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम. हे अर्जुन, जन्म का चिंतन कर, व्याधि का चिंतन कर, बुढ़ापे का चिंतन कर और मृत्यु का चिंतन कर और संसार से विरक्त हो जा. जन्म मृत्यु जरा व्याधि, चारों ही में दुख है, कहां है? वेयर इज द ब्यूटी? क्या इस शरीर में सौंदर्य है? ब्रह्म है सौंदर्य का. और फिर कवियों ने और लेखक ने और गीतों ने और फिल्मों ने बड़ा इसको प्रस्तुत ऐसे किया है जैसे कि बहुत अच्छा है. कुछ उसमें देखने जैसा है? जो दिखा रहे हैं वो मिथ्या है, वो बिजनेस है, सत्य कुछ और है. दर्शन. उसके बाद है स्पर्शनम, हाथ लगाना, टच करना. इस देह को लव हैज नथिंग टू डू विद बॉडी. वो कहते हैं हमारा प्यार है, पर प्रेम की परिभाषा शायद नहीं जानते. जिसे वो प्रेम कहते हैं वो वासना है. प्रेम का देह से कोई संबंध नहीं है. प्रेम तो त्याग का नाम है, प्रेम तपस्या का नाम है. प्रेम का किसी के हाथ को हाथ पकड़ लेना नाम नहीं है. स्पर्श करने की इच्छा, टच करने की इच्छा, हाथ से या मन से, मेंटल टचिंग्स, वो भी ब्रह्मचर्य का खंडन है. कहां पर? किसी भी स्थान पर, किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में. ये तीन चीजें हर आठ चीजों के साथ जुड़ी है. तो स्पर्श, स्पर्श की भी बहुत माया है. टच करना चाहता है. जब तक वासना मन में है तब तक शरीर सुंदर है. जब वासना मिट जाती है शरीर मिट्टी है. वैराग की सबसे बड़ी परिभाषा दी है किसी ने. वैराग अर्थात दो ही शब्द है वैराग के लिए. डेफिनेशन ऑफ वैराग, शरीर मिट्टी संसार असार. शरीर मिट्टी और संसार असार. इस संसार में पाने योग्य नहीं है कुछ. अभी अभी मम्मा की मुरली चली थी कुछ समय पहले, साकार मुरली में ही आया था. असार संसार है ये, भय का सागर है, असार का सागर है. स्पर्श चालू वहां से होगा, चालू होगा दर्शन से, फिर होगी इच्छा स्पर्श की और यहां रुकता नहीं है और आगे बढ़ेगा. संस्कृत में शब्द है केली. केली अर्थात खेलना साथ साथ, टू प्ले टुगेदर, मैन एंड वुमन. ये तो तब लिखे हुए थे पर वर्तमान में इसके दूसरे अर्थ है। खेलना केवल आउटडोर गेम्स ही नहीं है, खेलना एट अ वेरी सटल लेवल, व्हाट्सएप पे खेल, एक मैसेज उधर से, एक मैसेज इधर से, एक मैसेज उधर से, एक मैसेज उधर से, व्हाट्सएप पर खेल चालू है, कभी इसका रूठना कभी उसका रूठना, रूठना रूसना, वो उसको मना रहा है वो उसको मना रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बढ़ रही है, बस वही चालू है। ये भी एक खेलना है, इसमें भी बहुत फैमिलियरिटी है, इसमें भी बहुत बंधन है। ब्रह्मचारी इन सब खेलों से दूर रहता है। चौथा है प्रशंसा, स्तुति, किसी एक ही व्यक्ति की स्तुति करना, ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत ही अच्छी है, ये इसमें ये गुण बहुत अच्छा है, एकदम प्रभावित हो जाना उससे, एक व्यक्ति से। योगी को माया योगी के द्वारा आएगी, संसार के लोगों के द्वारा नहीं आएगी, योगी को योगिनी के द्वारा और योगिनी को योगी के द्वारा, सन्यासी को माया सन्यासिनियों के द्वारा और सन्यासिनियों को माया सन्यासी के द्वारा, तपस्वी को माया तपस्विनियों के द्वारा और तपस्विनियों को माया तपस्वी के द्वारा, क्योंकि तपस्वी किसी साधारण स्त्री की तरफ आकर्षित भी नहीं होता है। हां कोई ब्रह्मचारी नहीं है तो वहां आकर्षण जाता है उसका, कोई प्रभु प्रेम में पागल है विरक संसार से उसमें जाता है, वो रामकृष्ण परमहंस कहते थे यदि कोई स्त्री प्रभु प्रेम में, प्रभु प्रेम में साधारण स्त्री नहीं है, प्रभु प्रेम में नीचे रो रही है बिलख रही है जमीन पर लुढ़क रही है क्योंकि उसको भगवान नहीं मिल रहा है, सन्यासी अर्थात उसकी तरफ भी ना देखे, नहीं तो कोई नया आकर्षण चालू हो जाएगा, नया बंधन क्रिएट हो जाएगा। इतनी मेंटल डिटैचमेंट, सेवाएं सब करो सबके साथ रहो वो अलग चीज है, पर अंदर से डिटैच्ड, नहीं तो नाम सेवा का अंदर रोमांस, ऊपर से स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप अंदर से सेंसुअलिटी, क्योंकि विकारी वायुमंडल है। प्रशंसा, उसके बाद फिफ्थ गुह्य भाष्य, प्राइवेट टॉक्स, एकांत में 10-10, 15-15 मिनट फोन पर बातें चालू है, अरे क्या बात कर रहे हो, 3 मिनट से ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, 3 मिनट्स दैट्स इट। हां सेवा समाचार है कुछ और है तो ठीक है, और देहधारियों से कितना शेयरिंग करेंगे, जितना देहधारियों से शेयरिंग होगा उतना भगवान से शेयरिंग कम हो जाएगा। हमारे सामने बहुत बड़ी परिस्थिति आई, मैंने फोन किया और किसी बहन को या भाई को पूरा खुल के बता रहा हूं आधा घंटा, अब बाबा के सामने जब बताऊंगा थोड़ा कम बताऊंगा, उधर शेयरिंग कम हो जाएगा। जिसको व्यक्तियों के साथ शेयर करने की आदत हो गई है वो ऊपर शेयरिंग अपने आप कम हो जाता है। इसके लिए प्राइवेट टॉक्स, अंधेरे में बैठ के बातें करना, कोई इस अंधेरे में कोई उस अंधेरे में, और उससे भी बड़ी माया वीडियो कॉलिंग, इंटरनेट फ्री है या हम फ्री है, इंटरनेट फ्री है या हम, ये प्रश्न अपनी डायरी के ऊपर लिख के रखो, फ्री कौन है। वार्ती एनक, भूत प्रेत सब दूर रहे जब हाथ में हो मोबाइल, ये सब चिंता ही नहीं है उसको, बस मोबाइल 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 उसी में बिजी है, मैसेज करने में व्हाट्सएप भेजने में, दैट्स इट, दूसरा कोई काम ही नहीं है। प्राइवेट टॉक्स गुह्य भाष्य, यदि हमारा मोबाइल किसी के हाथ में आ जाए डर तो नहीं है, कोई देख ना ले, उसके बाद अगला सिक्स्थ
संकल्प, समीप जाने का संकल्प,
उस व्यक्ति के समीप जाने का। पहले तो फोन पे बातें चल रही थी, अभी प्लानिंग कर रहे हैं कहीं मिलने की एकांत में। ये दुनिया वाले बड़े जालिम हैं। प्राइवेट टॉक्स के बाद है संकल्प। संकल्प करना, प्लानिंग बनाना, कहां मिले, कहीं एकांत में, तो दिल की थोड़ी बातें हो, तुम उधर से कुछ बताओ, मैं इधर से कुछ बताऊंगा। युधिष्ठिर से महाभारत में एक जगह पूछा गया है, युधिष्ठिर भीम से नहीं, अर्जुन से नहीं, नकुल सहदेव से नहीं, युधिष्ठिर धर्मराज, महाभारत में वर्णन है, तुम्हारी मां यदि है कुंती तुम्हारे पास बैठी हुई तो क्या तुम्हारा मन काम विकार से मुक्त है? वो कहता है आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर। संकल्प मिलने का, एकांत में बैठने का, एक ब्रह्मा कुमार और एक ब्रह्मा कुमारी एकांत में एक कमरे में घंटों बातें कर रहे हैं या कुछ चर्चा कर रहे, चाहे ज्ञान वाली भी चर्चा क्यों ना हो, उसमें भी माया है, क्योंकि इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं है। अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। हमारी ओपीडी में जैन साध्वी आती है माउंट में, बहुत सारे आश्रम है वहां पर, दलवाड़ा में रहने के लिए कंटिन्यूस आती रहती है साध्विया, दूर दूर से उनको बुलाया जाता है। तो वो जो साध्वी आती है ओपीडी में, कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, बुखार या हार्ट प्रॉब्लम या कुछ भी आती है, तो पहले उनकी दो सेविका या शिष्य आती है, तो तुरंत नहीं बैठती है चेयर पर। अगर कोई पुरुष बैठा है वहां 20-25 मिनट पहले, तो वो नहीं बैठेगी, उनके अपने नियम है, एक्सट्रीम रूल्स, नहीं बैठती है। क्यों? वाइब्रेशंस। और यहां हम सेवा के नाम पर सब चलता है, सेवा बहुत अच्छी है पर तपस्या और त्याग तो चाहिए उसके अंदर। वो दादियों जैसी तपस्या हो तो ठीक है, ज्ञान मिला और सेवा करना चालू कर दिया, उनके बीच में वो 14 साल की तपस्या थी, बीच में दिन रात आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास था, स्त्री कौन और पुरुष कौन इस भाव से परे चली गई थी, वो स्त्रीत्व पुरुषत्व सब चला गया था, ऐसी प्रैक्टिस की थी। हमने क्या प्रैक्टिस की? इसके लिए ये संकल्प नहीं करना है किसी को कि मुझे मिलना है, एकांत में मिलना है और घंटों बैठ के बातें करना। उसके बाद है सेवेंथ, संस्कृत शब्द है अध्यावसाय। अध्यावसाय अर्थात वास्तव में निकट जाना, स्त्री का पुरुष के और पुरुष का स्त्री के, और एकांत में बैठना और लंबा समय बात करना। पहला संकल्प था प्लानिंग, एंड नाउ एक्चुअल टॉक्स, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। जो आकर्षण पहले नहीं था वो यहां तरह तैयार होगा, आंखों में आंखें डाल के देखते रहो, आकर्षण तैयार होगा। ये सातवीं बात। लास्ट, द एक्ट, जिसको बाबा काम कटारी कहते हैं, शारीरिक संबंध, ये सबसे लास्ट है। उसके पहले ये सात बातें, तो इन सातों में से किसी एक बात का भी यदि उल्लंघन हो रहा है, मनसा वाचा कर्मना, किसी भी स्थान समय और परिस्थिति में, तो वो ब्रह्मचर्य का खंडन है। ब्रह्मचर्य का खंडन अर्थात प्यूरिटी नहीं, प्यूरिटी गॉन। साकार महावाक्य है बाबा के, जिस बच्चे ने मुंह खाला किया है उससे कहो कि एक साल तक बाबा को मुंह ना दिखाए, आउट। तो सबसे पहली चीज है कंट्रोल, ये सारी चीजें के लिए संकल्प की आवश्यकता है। ना बोल दिया तो अपने आप स्टॉप हो जाएगी, नहीं तो ये संबंध बढ़ते जाएगा और वो दो व्यक्तियों के बीच का संबंध, संसार का तो छोड़ दो, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी के बीच का संबंध ही उनके लिए बंधन बन जाएगा। ना वो आगे बढ़ पाएगा ना ये आगे बढ़ पाएगा। उसके बाद कहा कंजर्व, इस एनर्जी को कंजर्व करना है। कंजर्वेशन के लिए जितने भी लूप्स है, होल्स है, उन सबको बंद करना पड़ेगा। तो इसमें आएगा सेक्सुअल ट्रिगर्स, वो कौन सी चीजें हैं जो देखकर सुनकर ऐसी बातें जो काम के संकल्प आते हैं, कुछ भी हो सकता है, फिल्में, मूवीज, क्लिप्स, ऑडियोस, पिक्चर्स, पोस्टर्स, क्लोथ्स, थिंग्स, स्टैचूज, कुछ भी हो सकता है। आइडेंटिफाई करना है ट्रिगर क्या है, किसने ट्रिगर किया, वो सारे ट्रिगर को क्लोज कर देना, तब एनर्जी जाके कंजर्व होगी। और जिसकी आंखें वश में नहीं, जो चलायमान है, इधर उधर 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 दृष्टि जाती रहती है, वहां पर माया बहुत ज्यादा है। Where the eyes goes, energy flows. जहां आंखें जाएगी, एनर्जी ऊर्जा उस ओर जाएगी, फिर उसी की याद आएगी, उसी की मन में संकल्प चलेंगे, क्रिएशन होगा। सेक्सुअल फैंटेसीज बहुत बड़ी बीमारी है वर्तमान समय युवकों में, सोचना मन ही मन, कल्पना करना विकारों की। तीसरा है डाइवर्ट, GYDS से इसको डाइवर्ट करना है, ज्ञान योग धारणा सेवा। अपने आप को इतना बिजी कर दो ज्ञान में, चिंतन में, योग में, धारणा में, सेवा कर, कि ये एनर्जी अपने आप डाइवर्ट हो जाएगी, फिर इसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप डाइवर्ट हो जाएगी। क्योंकि काम विकार अंधकार के जैसा है और पवित्रता प्रकाश है, जहां प्रकाश है वहां पवित्र अंधकार आ ही नहीं सकता। अंधकार है अर्थात प्रकाश की कमी है। अंधकार से लड़ाई करने में युद्ध टाइम वेस्ट नहीं करना है कि ऐसा संकल्प क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया। पवित्रता को भरते जाओ, पवित्रता को भरते जाओ, अपने आप वो चला जाएगा। इंक की बॉटल है, खराब हो गई है, पानी डालते जाओ, स्वच्छ पानी आएगा धीरे धीरे। लास्ट है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन अर्थात उदात्तीकरण, प्यूरिफिकेशन। ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। प्यूरिफिकेशन ऑफ द एनर्जी, जो एनर्जी नीचे बहने लगती है उसको ऊपर बहाना है, उसको संकल्प देने पड़ेंगे, पावरफुल समान देने पड़ेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, इंप्यूरिटी मुझे टच नहीं कर सकती। जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है, इस चित्र के सामने रोज जाकर खड़े रहना, देखना इस नारायण का उस लक्ष्मी के प्रति क्या दृष्टि है, उस लक्ष्मी की इस नारायण के प्रति क्या दृष्टि है। जैसी प्यूरिटी इनमें है, क्या ऐसी प्यूरिटी मुझ में है। अव्यक्तवाणी जो चली अभी अभी नीचे, एक राज्य मेरे मन में, एक राज्य है अखंड राज्य, मेरे मन में अखंड राज्य है। उनका धर्म प्यूरिटी था, मेरा धर्म प्यूरिटी है या माया दखल डालती है। लॉ एंड ऑर्डर उसमें था, इधर लॉ एंड ऑर्डर है। जैसी प्यूरिटी उसमें है वैसी ही प्यूरिटी मुझ में आनी चाहिए, और ना ही मुझे देखकर किसी और में इंप्यूरिटी के संकल्प आए। अपने आप को ऐसे नहीं सजाना है, संवारना है कि कोई मेरी तरफ आकर्षित हो जाए, चाहे स्त्री या पुरुष दोनों। ऐसे ड्रेस, ऐसी हेयर स्टाइल और क्या, सेंट, स्प्रे, शैम्पू और ढेर सारी चीजें। तो ये सारा C सी में है। ये सारी बातें सी की याद रखनी है। तो ब्रह्मचर्य की ये कौन सी बात हुई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। ये बातें केवल सुनने की नहीं है, पर इसको डेली प्रैक्टिस करने की। फिर एक ही बात मैं रिपीट कर रहा हूं, कुमार जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है प्योरिटी। एट एनी कॉस्ट, एट एनी रेट, डू नॉट लूज इट। बाकी सब कुछ है, प्योरिटी नहीं है, व्यर्थ, कोई उसका मोल नहीं है। बाबा को नहीं चाहिए तुम्हारी ऐसी सेवा। कोई कहते मैं दिन भर सेंटर में सेवा करता हूं, नहीं चाहिए। जयंती बहन ने एक उदाहरण दिया था, लंदन का एक भाई बहुत अनन, लंदन का या कहीं और का, बहुत अनन्य भाई जिसने बहुत सेवाएं की, बहुत सारी नई नई सेवाओं की शुरुआत की। एक बार वो सेंटर पर आना ही उसका फिर बंद हो गया। फिर कभी कभी आता था, आता था तो चुपचाप बैठता था और चला जाता था। उसको पूछता था क्या हुआ, पूछा जाता तो कहता है डोंट नो, प्रोबेबली बाबा डजंट वॉन्ट मी टू वर्क एनी मोर, इस तरह से ज्ञान युक्त तो उत्तर देता था। शायद बाबा नहीं चाहता अब मैं और भी कुछ सेवा करूं। पूछा तो बताता नहीं था। फिर एक बहन को उसके पीछे जरा पूछने के लिए बिठाया काउंसिलिंग, तो उसने एक दिन फिर अपने अंदर की सारी बात बताई। उसने कहा मुझे एक नई आदत लग गई है, यूट्यूब सेवा करता हूं दिन भर, रात में थक जाता हूं तो यूट्यूब देखना चालू करता हूं, और कब 10, 11, 12, 1 बज जाता है पता नहीं चलता है, और वो सारे विकार देह, और फिर उठता हूं तो अमृत वेला नहीं, और मुरली तो आता हूं क्योंकि आदत है पुरानी मुरली जाने की, पर इंटरेस्ट कहां? शरीर को देखने वाले और शरीर की ओर आकर्षित करने वाले आत्मा की बातों में तो कहां इंटरेस्ट रहेगा? ये ज्ञान कोई साधारण ज्ञान तो है नहीं कि किसी की भी बुद्धि में बैठ जाए, शेरनी का दूध है। पात्र ऐसा चाहिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं द फॉल ऑफ ग्रेस, आत्मा का पतन। तो चेक करना है कौन से लूप होल्स, बॉटलनेक्स, कौन से होल्स है जिससे ये ऊर्जा बह जाती है, जिसके मन में विकार उत्पन्न होता है। इतना श्रेष्ठ ज्ञान है, सब कुछ है, बैच लगा हुआ है, सफेद कपड़े हैं, पर मन में दाग। यदि हम बाबा के सामने आज और अभी जाकर खड़े हो जाए और हमारे मन में विकार के संकल्प है, तो बाबा कहेगा मुझे तुमसे बदबू आती है, तो हमको अच्छा लगेगा? बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए जो प्योर है। जो देह से उपराम रहते हैं, जिनको देह से जरा लगाव नहीं, ऐसे समर्पण वाले बच्चे बाबा को चाहिए। उसके बाद एच, एक बताया था रीडिंग, एच इज हियरिंग या लिसनिंग। क्या हम सुनते हैं दिन भर, कौन से गीत सुनते हैं? फिल्मी गीत सुनते हैं या बाबा के गीत सुनते हैं? फिल्मी डायलॉग सुनते हैं या बाबा के ज्ञान की बातें सुनते हैं? इस लिसनिंग को, हियरिंग को प्यूरिफाई करना है। इसके लिए पहले भी कहा, रोज कम से कम एक क्लास डेली सुननी है पुरुषार्थ की। और केवल सुनना नहीं है, उसके पॉइंट्स निकालने हैं, नोट्स निकालने हैं। नोट्स हो गए, फिर उस नोट्स को सारे दिन भर रिवाइज करने हैं, तभी वो क्लास स्वरूप बनेगा। एक एक से चालू करो, दादियों से चालू करो, जगदीश भाई जी है, राजू भाई जी है। एक लक्ष्य रखो कि इस एक मास में राजू भाई जी के हम पूरी क्लास सुनेंगे, जितनी है अभी तक की, हर दिन वन क्लास, या जगदीश भाई जी, ये लक्ष्य रखना है। और केवल सुनेंगे नहीं, उसको उसके थोड़े नोट्स बनाएंगे और उसके काम करेंगे। हाँ, और एक दूसरी चीज, जो लोग ट्रैवलिंग बहुत करते हैं कार में, उनके लिए बहुत अच्छा है, बजाय इसके कि व्यर्थ की बातें करो, क्लास लगा दो और सुनते रहो। और जिनको पैदल ऑफिस जाते हैं या काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, ईयरफोन एंड चालू। लिसनिंग जो है ये भी एक स्किल है, हियरिंग, हियरिंग कहो लिसनिंग कहो। और दूसरा अभ्यास एक भी करना है कि सुनते समय हमारी एकाग्रता कितनी है। जैसे अभी आपने क्लास सुनी, ये क्लास जैसे ही हम पूरा करेंगे, अगर किसी को कहा कि सारा के सारा रिपीट करो, तो हम शुड बी इन द पोजिशन टू रिपीट एटलीस्ट मुख्य मुख्य पॉइंट्स। इसके लिए स्किल जो है हमारी, कॉन्सेंट्रेशन पावर याद रखना है, सुनते सुनते ही नोट करते जाना है अंदर ही अंदर, डायरी में भी करो पर साथ में अंदर ही अंदर, ये शार्प स्टूडेंट्स की निशानी है। दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक स्मार्ट एक सिंसियर। सिंसियर बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, स्मार्ट जो होते हैं ज्यादा मेहनत नहीं करते, उनके पास टेक्निक्स होती है चीजों को याद रखने की, समझने की, फटाफट काम करते हैं, तो स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। उसके बाद में फिर से ए, एडिक्शन फ्री, इंटरनेट एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, यूट्यूब एडिक्शन, व्हाट्सएप एडिक्शन, फेसबुक एडिक्शन, साइट सीइंग एडिक्शन, फूड एडिक्शन। कौन सी आदत इतनी पक्की हो गई है कि अब उससे छूटना मुश्किल हो रहा है? मैसेजिंग एडिक्शन, बेंगलोर के निमहांस में अभी अभी एक लड़की को एडमिट किया गया था, उसको एडिक्शन था टेक्सटिंग की, मैसेजेस भेजने की, एक दिन में 6-6 घंटे मैसेज भेजती थी, उसको एडमिट है, अभी उपचार चालू है। इतनी एडिक्शन है उसमें। यूएस में एक स्टडी हुई थी जिसमें एक कॉरपोरेट का एक व्यक्ति 36 टाइम्स अपना मोबाइल एक घंटे में ईमेल चेक करता है, एक घंटे में 36 टाइम्स, ऐसा उस स्टडी का रिजल्ट था। स्क्रीन टाइम कितना है? स्क्रीन टाइम पता है ना, कितना देर तक ऑनलाइन है। भगवान के पास यदि परमधाम में व्हाट्सएप अगर हो, तो उसके व्हाट्सएप में हमारा जो लास्ट सीन दिखेगा वो होगा 4 AM, लास्ट सीन एट 4 AM, उसके बाद में पता नहीं कहां गुम हो गए, दिखे ही नहीं उसके, उससे कनेक्शन में भटक रहे हैं यहां वहां संसार में। तो एडिक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, किस चीज का एडिक्शन बन गया है। इंटरनेट एडिक्शन सबसे भयंकर, कुछ है नहीं, लक्ष्य बैठे है उस पर, क्लिक क्लिक क्लिक, ब्रह्मा कुमार से नीचे सीधा क्लिक और शूद्र कुमार। ब्रह्मा कुमार और शूद्र कुमार बनने में कितनी देरी है? एक क्लिक की। आइडेंटिफाई एडिक्शंस, ऐसे कौन से एडिक्शंस है जो ब्रह्मचर्य के विरुद्ध है? फ्री योरसेल्फ, एक संकल्प की आवश्यकता है बस। एक बहुत छोटा सा वाक्य है, सभी अपनी डायरी में नोट करके रखेंगे बड़े अक्षरों में, बाबा ने मना किया है, दैट्स इट, बाबा ने मना किया है, बैन बैन बैन, ये हम नहीं करेंगे, ये हम नहीं देखेंगे, ये हम नहीं सुनेंगे, ये हमारे लिए नहीं है। हम वो नहीं कर सकते जो संसार के युवक कर रहे हैं। बाबा ने मना किया है, पावरफुल शब्द है। और राज योगा मेडिटेशन अर्थात योग, बिना योग के काम विकार को वश में नहीं किया जा सकता है। ज्ञान अलोन पर्याप्त नहीं है, जब तक आत्मा देह से अलग नहीं हो जाती, देह का आकर्षण कम होने वाला नहीं है। कितना भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि यह सब ऐसा ऐसा है, उससे कुछ नहीं होने वाला। लंबा समय तक देह से अलग रहना तो ही ब्रह्मचर्य होगा। वास्तव में ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ भी वही है, ब्रह्म ही स्थिति में स्थित होना। ब्राह्मी अर्थात जब आत्मा ब्रह्म लोक में है, उस स्थिति में स्थित होना अर्थात ब्रह्मचर्य, वो वास्तविक अर्थ है ब्रह्मचर्य का, ब्राह्मी स्थिति। तो योग को बढ़ाना है, मिनिमम 2 घंटा बैठकर योग सभी ब्राह्मणों का होना चाहिए, मिनिमम 2 घंटा 24 घंटे में बैठकर, और जो तीव्र पुरुषार्थी है उनका 4 घंटा। 4 घंटा बहुत बड़ा टारगेट है, बैठकर बहुत सारी सेटिंग करनी पड़ेगी दिनचर्या में, बहुत सारा एडजस्टमेंट और बहुत सारा त्याग, और अपने लोभ को थोड़ा कम करना पड़ेगा। लोभ जो है ना, लोभ जो ग्रीड को हम नीड कह के रखा है ना, ग्रीड है पर उसको हम कहते हैं नीड है वो ग्रीड, ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, किस लिए चाहिए? बाबा के यज्ञ में लगाने के लिए, वो भी बड़ी एक माया है। योग को बढ़ाना है, टाइम को बढ़ाना है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़ानी है। जब तक यह अनुभव ना हो मैं आत्मा अलग वो शरीर वहां है पड़ा हुआ, आग लग रही है उसको देखना है, शरीर को आग लगते हुए देखना है, शरीर को भस्म होते हुए देखना है, शरीर तत्व में विलीन होते हुए देखना है, शरीर मर गया लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुनना, कंधों पे बैठ के जा रहे लोगों के बहुत पुरानी आदत है मरने के बाद दूसरों के कंधे पर बैठ के जाने की, आत्मा की, लोग क्या कह रहे हैं, हम सोचते थे ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, अब कह रहे हैं अच्छा हुआ गया, सीट तो खाली हुई, जिनको अपना समझा था सब पराए निकले। मधुबन में कोई जाता है तो भोग बनता है हलवा, कभी कभी किसको पता नहीं होता है तो पूछता है हलवा कौन गया पहला प्रश्न ये पूछते है कौन गया किसी को कोई लेना देना नहीं है, कोई जाए हलवा है बस। योग को बढ़ाना है, फिर है वाय, वाय एक अलग चीज है, योगासन प्राणायाम और व्यायाम, ये 3 चीजें हैं, योगासन प्राणायाम और व्यायाम। अभी अभी योगा डे मनाया ना 21 जून, तो योगासन भी आवश्यक है ब्रह्मचर्य की साधना के लिए, आसनों का भी बहुत महत्व है ब्रह्मचर्य की साधना के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए छोड़ दो। बाबा कहते हैं वो लोग प्राणायाम चढ़ाते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला, वो दूसरी बात है, यहां हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि शरीर जो है अगर स्वस्थ नहीं तो ब्रह्मचर्य भी नहीं। ब्रह्मचर्य काम विकार का एक ट्रिगर है बीमारी, जो लिस्ट गिनाई आपको काम विकार के ट्रिगर्स की, एक ट्रिगर है बीमारी। जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसे देह की याद आती है ज्यादा, अपने भी और किसी और की भी, और अपने भी और कोई अगर उसकी केयर नहीं कर रहा है तो उसकी भी याद आती है, कोई आए और यहां हाथ रख दे आहा हा हा बड़ा अच्छा लगता है फिर और पूछे कुछ चाहिए क्या, कुछ बना के लाऊं क्या, अच्छा लगता है ना राहत मिलती है आहा हा। कोई आए हम बीमार है पूछे कैसे हो, फिर हम कहे कल से आज थोड़ा ठीक है, पर दर्द तो अभी भी बहुत है। आप आए और दर्द गया, ऐसे ही आते रहो रोज। एक भाई थे किसी सेवा केंद्र के, 30 साल सेंटर पर समर्पित और बहुत सेवाएं की बहुत सेवाएं की, एक दिन बीमार पड़ गए और फिर भर्ती थे और फिर सेवाधारी था, फिर सेवाधारी छुट्टी पर चला गया, फिर कोई था नहीं उनके साथ, बड़ा दुखी थे, पर उन्होंने खाली सेवाएं की थी, ज्ञान और योग से मुक्त थे, ज्ञान मुक्त और योग मुक्त सेवा है ज्ञान योग से हमको कोई लेना देना नहीं, हम तो सेवाएं करेंगे, दिन रात सेवाएं की कितने सालों तक, और जब बीमार पड़े और फिर सेवाधारी था फिर वो छुट्टी पर, तो उनके मन में संकल्प चलने लगे, इतने उदास इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए, कहते थे मैंने अगर शादी कर ली होती ना तो आज मेरे बीबी और बच्चे मुझे देखने होते, ऐसी दयनीय अवस्था एक ब्रह्मा कुमार की हमने देखी। किसके लिए? ज्ञान एंड योग। नहीं तो देहधारी चाहिए, सहारा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, कोई फोन करे 10 बार और पूछे दर्द कम हुआ क्या, मैं आ नहीं सकती पर मेरी शुभकामनाएं भेज रही हूं, आहा हा, इतना क्या कह दिया आपने, बस जीत लिया दिल को। और यदि कोई रोज ही भोजन बना के लाए तो बस आगे का ब्रह्मा कुमार जीवन उसके चरणों में फिदा, क्योंकि पुरुष के दिल का मार्ग उसके पेट से खुलता है। अगर किसी को कुछ करना है तो खिलाओ और खिलाओ और खिलाओ, बड़े से बड़ा शत्रु भी मुट्ठी में आ जाएगा। क्योंकि यहां पहुंचना है ना, तो इधर से चालू करो। पेट से तो योगासन, प्राणायाम और व्यायाम, व्यायाम भी बहुत आवश्यक है। नहीं तो फिर मोटापा बीमारियां और बहुत सारी ढेर सारी बीमारियां आ सकती है। और ये चुस्त रखता है शरीर को, तंदुरुस्त रखेगा। वॉकिंग, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। प्राण, मन और वीर्य, या तो इसको नियंत्रित करो ज्ञान से, या तो प्राणों को भी यदि वश में कर दिया जाए श्वास को प्राणायाम से, तो अपने आप ब्रह्मचर्य फलित होगा। इतनी पावर उस इसमें भी है, प्राणायाम में, जिसमें श्वासों को हम अपने वश में कर लेते हैं। मन, मन मनाभाव या फिर मेडिटेशन, तीन के द्वारा ब्रह्मचर्य साधा जाता है। हठ योगी इसके ऊपर फोकस करते हैं, अफीम दवाइयां खाते हैं ताकि डल हो जाए सारी चेतना, पर यह ज्यादा समय नहीं टिकता है। सबसे मेन तो मन है, योग, उसके बाद प्राणायाम का भी महत्व है। इसके लिए तीनों भी चीजें हैं। उसके बाद है ए अर्थात अवॉइड। इसकी एक लिस्ट बनानी है हर एक ने कि मेरे जीवन में कौन सी ऐसी बातें मैं कर रहा हूं जो मुझे अवॉइड करनी है। ऐसा कोई संबंध है कि जो जिसमें फैमिलियरिटी बहुत है, और संबंधों में भी जितनी डिटैचमेंट होगी उतने अच्छे है संबंध, जितनी फैमिलियरिटी होगी घृणा भी ज्यादा बढ़ेगी। इसके लिए संबंधों में डिटैचमेंट, और जिसके प्रति हमारे बहुत रिस्पेक्ट है उससे तो बहुत ज्यादा डिटैचमेंट हो, जिसको हम मानते हैं बहुत उससे बहुत ज्यादा डिटैचमेंट हो, क्योंकि उसके नजदीक जाएंगे उसके अवगुण दिखने चालू रहेंगे। जैसे कुमार सेंटर पर आते हैं, बहनें उनको एकदम देवी जैसी दिखती है पहले पहले, बाद में पता चलता है इनमें भी वो कुछ कुछ अवगुण तो हमारे जैसे ही है, और फिर रिस्पेक्ट कम हो जाता है, फैमिलियरिटी बढ़ती है। इसके लिए डिटैच्ड, जितना ज्यादा डिटैचमेंट रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा, लंबा समय चलेगा। जितनी ज्यादा अटैचमेंट और फैमिलियरिटी, रिलेशनशिप में गिरावट चालू हो जाती है, चाहे वो हस्बैंड और वाइफ का ही क्यों ना रिलेशन हो, कोई भी रिलेशनशिप। अवॉइड, तो अवॉइड की लिस्ट आप सभी बनाएंगे, ये आप सबके लिए अपना होमवर्क कि कौन सी चीजें मुझे स्टॉप करनी है बिल्कुल अभी के अभी, राइट नाउ, एज सून एज पॉसिबल, अभी के अभी इसी भट्टी में यहां बैठे बैठे ही। ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे एकदम स्टॉप करनी है, जो एकदम श्रीमत के विरुद्ध है, ग्रॉसली अगेंस्ट है। फिर है व्रत, वीआरटी, वी अर्थात वैराग। बिना ब्रह्मचर्य की साधना बिना वैराग के हो नहीं सकती, और वैराग उत्पन्न करने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता है। इस संसार की असारता को देखना। विनाश की तो इतनी बातें सुन रखी है कि वैराग आता ही नहीं है। विनाश सामने खड़ा है, मौत का बाजार गर्म होगा, बाप सबको लेने आए हैं, सबकी सरसों मिसल पिस जाएंगे और टिड्डियों मिसल ऊपर चले जाएंगे, मच्छरों सदृश, इधर से सुना और इधर से गया, असर ही होना बंद हो गया विनाश का। संसार असार है, वैराग चाहिए। अस्पताल में जाओ, देखो उन रोगियों को क्या हालत है, ये है शरीर। वैराग चाहिए उन भिखारियों को देखो रास्ते पर, ये है शरीर। उन वृद्धाश्रम में जाओ, वो है शरीर, बूढ़ा, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, दांत गिर गए, झुक गए, ये है शरीर, गंदगी से भरा हुआ। शमशान, वहां जाना बीच बीच में, बहुत अच्छी जगह है। किस लिए जाना? शरीर को जलते हुए देखने के लिए। वो जो लपटे है आंख की, वो वैराग उत्पन्न करेगी। ये है कहां है सब कुछ, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, सब गया, जल रहा है, तो वैराग आएगा। और बिना वैराग के साधना हो नहीं सकती, बिना वैराग के तो कुछ भी नहीं हो सकता। और वैराग की सबसे कम चर्चा है ब्राह्मण परिवार में, उससे भी कम ब्रह्मचर्य की चर्चा है, जो है बड़ी बड़ी चर्चा है, बाप समान कैसे बने, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चर्चा है। तो वैराग, फिर है रिलेशनशिप, ये फिर से रिपीट कर रहे हैं यहां पर, डिटैच रिलेशनशिप। आप सबको एक कहानी बताते हैं जो कई उन्हें सुनी भी होगी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, शोशीर कविता, बंगाली, द लास्ट पोएम। उसमें एक पुरुष है, एक स्त्री है, दोनों का आपस में बहुत प्यार है और दोनों शादी करना चाहते हैं। पुरुष जो है वो जो भाई है वो गरीब है, और जो कन्या है, वो जो स्त्री है, वो बहुत रईस है। तो दोनों का आपस में बहुत प्यार है और दोनों भी शादी करना चाहते हैं। वो दोनों मिलते हैं और शादी की बात करते हैं, तो वो कन्या कहती है, मैं तुमसे शादी करूंगी पर मेरी एक शर्त है, शर्त यह है कि शादी के बाद हम एक साथ नहीं रहेंगे। वो कहता है व्हाट? वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक महल वहां बना के दूंगी और मैं इधर रहूंगी, बीच में झील, तुम वहां रहना, मैं इधर रहूंगी, और कभी तुम उधर से आ रहे, कभी मैं इधर से आ रही, तो हम मिल लेंगे अचानक, विदाउट एनी प्लानिंग, तुम उधर से नौका विहार, मैं इधर से नौका विहार, हाय हेलो बाय। तो वो कहता है, ये कैसी शादी है, ये भी कोई शादी है? तो शादी करी क्यों रहे, शादी कर रहे और हम अलग अलग रहेंगे? वो कहती, हां शादी करनी है तो ऐसी करूंगी। वो कहता है, आखिर क्यों? वो कहता है, मैं तो ऐसी शादी करूंगी। हां अगर तुमको किसी और से प्यार है और शादी करनी है तुम जाके कर लो, पर मैं तो तुम्हारी याद में जीवन भर बिताऊंगी ऐसी अकेली, मंजूर है तो करो। वो कहता है, पर आखिर क्यों? तो वो उत्तर देती है, यदि हम अकेले, हम अगर साथ में आ जाए तो हमारे जो प्रेम में जो फ्रेशनेस है वो शायद कम हो जाएगी, वो जो रोमांस में जो ब्यूटी है वो शायद कम हो जानी की, और मैं नहीं चाहती है, मैं चाहती हूं कि हमारा प्रेम हमेशा रहे, इसके लिए तुम उधर मैं इधर, इसके लिए तुम उधर और मैं इधर, ब्रह्मा कुमारी उधर और ब्रह्मा कुमार इधर, और बीच में एक झील, मिल गए तो मिल गए, हाय हेलो ओम शांति बाय। चाहे दो बहनें सेवा केंद्र पर है, चाहे दो भाई सेवा केंद्र पर है, चाहे एक ही परिवार में लोग हैं, चाहे ऑफिस में है, कहीं पर भी हो, सारे रिलेशनशिप्स कैसे हो? डिटैच्ड। क्योंकि जहां आपस में साथ आ गए, हम ये नहीं कह रहे कि साथ नहीं रहो, दो भाई अगर साथ रहते तो बहुत अच्छी बात है, दो बहनें साथ रहती है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु बहनों बहनों में और भाई भाइयों में भी आपस में ही दोस्ती हो जाती है। हमने मधुबन में देखा था, दो कन्याएं, इतनी दोस्ती मधुबन में, दोनों भोजन कर रही है, वो उसको खिला रही है, वो उसको खिला रही है, एक दूसरे को खिला रही है, प्यार लगाव है वो भी। तो सारे रिलेशनशिप्स में क्या चाहिए? डिटैचमेंट, डिटैच्ड रिलेशनशिप। ए, दो बातें बची है, ए मींस ऑटो सजेशंस, खुद को सजाव देना, आत्म सजाव, जिसको कहते हैं आत्म सुझाव, सोमान, अपने आप को, इसका बहुत महत्व है, अफर्मेशंस कहते हैं साइकोलॉजी में इसको, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं ये सारी चीजें नहीं कर सकता, बाबा ने इन चीजों के लिए मना किया है, अफर्मेशंस, ऑटो सजेशंस खुद को देना, ऐसे कुछ लिस्ट बनाना, उसके तीन पार्ट होते हैं, जैसे किसी विकार से मुक्त होना है तो मैं काम विकार से मुक्त हूं, प्रेजेंट टेंस, सेकंड फ्यूचर, मैं काम विकार से मुक्त हो रहा हूं या होऊंगा, तीसरा मेरे लिए मुक्त होना बहुत ही सहज है, नेचुरल, जैसे कोई दारू पीता है और उसको फ्री होना है अल्कोहल से, तो ये तीन प्रकार दिए जाते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड नेचुरल। प्रेजेंट मतलब ये दारू पीना तो बस मेरे से छूट रहा है, छूट गया, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर छूट जाएगा, और नेचुरल ये तो छोड़ना तो बस मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, बहुत ही सहज है। ये तीन चीजों में अफर्मेशंस को डिवाइड किया जाता है, तो आत्म सुझाव जो है ऑटो सजेशंस में, ये तीन चीजें, और लास्ट है टेक ओथ, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा। तो अभी सभी योग में बैठेंगे, डायरी बंद करेंगे, और जो बातें यहां बताई, और सुनते सुनते जो मन ही मन कुछ हलचल हुई या संकल्प चले, उन सब को एकत्र करके सार और निचोड़ के रूप में संपूर्ण प्यूरिटी की सभी को प्रतिज्ञा करनी है। और बाबा ने एक मुरली में कहा, यह प्रतिज्ञा एक स्वयं से करनी है और एक बाबा से करनी है, कि अब तक जो हुआ हुआ, और एक दूसरी बात, अब तक का जीवन यदि विकारी है, अब तक के जीवन में यदि बहुत सारी भूले हुई है, अब तक के जीवन में यदि काम विकार से संबंधित भूले हुई है, फुल स्टॉप, अब पश्चाताप करने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है कि ये क्यों हुआ, कैसा हुआ, वो भी शरीर का एक हिसाब किताब था, उस व्यक्ति के साथ हिसाब किताब था, मन का हिसाब किताब था, कोई किसी जन्म का संबंध था तो रहा हुआ था, वो हुआ बुरा, फुल स्टॉप, अब उसका भी ज्यादा चिंतन नहीं करना है, हो गया वो हो गया बस, जैसे बाकी चीजों की यात्रा है जन्म और मरण, वैसे संबंधों की भी यात्रा है, संबंध की शुरुआत, संबंधों का एंड, वो विकार का संबंध था, व्यक्ति वही रहेगा, व्यक्ति से अभी भी बात करेंगे, पर जो दोनों के बीच का जो संबंध है अब ऐसा होगा प्योर, व्यक्ति को छोड़ के नहीं भाग जाना है, परंतु रिलेशनशिप को चेंज कर देना है, उस फॉर्मेट को, उस दोनों के बीच जो भी है, और जितना हो सके डिटैच्ड। तो सभी संपूर्ण रिलैक्स बैठेंगे, स्थिर बैठेंगे, और बाबा के साथ पहले ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बचेगा, उसके बाद सॉफ्ट म्यूजिक बचेगा एक 5 मिनट, उस 5 मिनट में बाबा के साथ गहरी आंतरिक रूह रिहान करनी है और अपनी प्यूरिटी, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को फिर से रिवाइज करना है। ओम शांति। दादा सम्मुख मैं फरिश्ता बाबा के पास, बाबा के नैनों से संपूर्ण पवित्रता की किरणें मुझ में आ रही है। Thank you.
बाबा के मस्तक से ज्ञान का दिव्य प्रकाश मुझ में भर रहा है। बाबा मैं जो हूं और जैसा भी हूं आपका हूं। यदि मन सा वाचा और कर्मना संबंध और संपर्क में मैंने प्यूरिटी के महाव्रत को रिंचक मात्र भी तोड़ा हो, आत्मा को छोड़ देह की ओर आकर्षित हुआ हो, ब्राह्मण जीवन की पहली मर्यादा का उल्लंघन किया हो, तो बाबा सच्चे दिल से आज मैं माफी मांगता हूं। जो विकारों के दृश्य बातें मैंने सुनी देखी आज से उन सबको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने का संकल्प करता हूं। बाबा मैं तुझ पर सब कुछ अर्पण करता हूं, मेरे प्यूरिटी की आज से तुम रक्षा करो। बाबा ने अपने दोनों हाथ मेरे हाथ में ले लिए, अत्यंत प्रेम का अनुभव और ऊर्जा मेरे अंदर आ रही। ब्रह्मचर्य की ऊर्जा प्योरिटी की शक्ति मुझ में भर रही। मेरी दिनचर्या मित्र संबंधी रिश्तेदार संबंध संपर्क वाले कार्यक्षेत्र में काम करने वाले लोग और सड़क पर चलने वाले लोग, मेरा किसी में कोई मोह नहीं, सब कुछ तुम्हारा है। और आज से मैं संकल्प करता हूं अखंड ब्रह्मचर्य का, संपूर्ण पवित्रता का, निर्विकारिता का। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर तुम परम पवित्र आत्मा हो। ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों के साथ मैं एक नई जीवन की शुरुआत आज करता हूं बाबा मेरे साथ है। प्योरिटी जन सिद्ध अधिकार है। ब्राह्मण परिवार की शुभ भावनाएं मेरे साथ है। बाबा की दुआएं इन सब को लेकर एक नई सुबह आज एक नई किरण लेकर आई है। ओम शांति।